अध्याय 54 शिमशोन। ये अध्याय न्यायियों 13 से 16 पर आधारित है। सर्वव्यापी स्वधर्म त्याग के समय में भी परमेश्वर के श्रद्धालु उपासक इज़राइल के छुटकारे के लिए विनती करते रहे, यद्यपि प्रकट रूप से कोई उत्तर नहीं मिला, यद्यपि लगातार कई वर्षों तक देश पर अत्याचारियों का पलड़ा भारी होता रहा, परमेश्वर उनके लिए सहायता जुटा रहा था। पलिश्तियों के अत्याचार के प्रारंभिक वर्षों में ही एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसके माध्यम से परमेश्वर उन बलवंत शत्रुओं की ताकत को वश में करना चाहता था। पलिश्ती तराई से लगे हुए पहाड़ी प्रदेश की सीमा पर सोरा का छोटा सा शहर था। दान का गोत्र उन थोड़े से घरानों में से था जो सार्वजनिक धर्म त्याग के दौरान यहोवा के प्रति सत्यनिष्ठ बने रहे, और दान के गोत्र से मनोह का परिवार सोरा में वास करता था। मनोह की संतानहीन पत्नी को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने प्रकट होकर ये संदेश दिया कि उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसके माध्यम से परमेश्वर इज़राइल को छुटकारा दिलाना प्रारंभ करेगा। इस संदर्भ में स्वर्गदूत ने उसकी निजी आदतों से संबंधित और उसके पुत्र के पालन पोषण के बारे में भी निर्देश दिए। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाखमधु या और किसी प्रकार की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। और यही प्रतिबंध प्रारंभ से ही उस बालक पर भी लागू होना था, और इसके अतिरिक्त उसके सिर के केश नहीं काटे जाने थे, क्योंकि जन्म से ही उसे एक नाजीर के तौर पर परमेश्वर के लिए अर्पित किया जाना था। उस स्त्री ने अपने पति के साथ जाकर स्वर्गदूत का वर्णन करने के पश्चात उसके संदेश को दोहराया। फिर इस डर से कि उनको सुपुर्द किए इस महत्वपूर्ण कार्य में वे कोई गलती न कर बैठें, पति ने प्रार्थना की, परमेश्वर का वो जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। जब स्वर्गदूत दोबारा प्रकट हुआ, मनोह ने उत्सुकतावश पूछताछ की, उस बालक के जीने का तरीका कैसा होगा और उसका व्यवसाय क्या होगा। पिछली बार दिए गए निर्देश को दोहराया गया। जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से ये परे रहे, ये कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को ये माने। परमेश्वर के पास मनोह के प्रतिशुद्ध संतान से करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था, और इस काम के लिए उसमें वे आवश्यक योग्यताएं सुरक्षित करने के लिए माँ और बेटे दोनों की आदतों को सावधानी से नियंत्रित करना था। मनोह की पत्नी के लिए स्वर्गदूत का ये निर्देश था, न तो उसे दाखमधु और न ही कोई किण्वित पेय पदार्थ पीने देना और न ही कोई अशुद्ध वस्तु। जिस सब की मैंने आज्ञा दी है उसका उसे पालन करने दे। माँ की आदतों के द्वारा बच्चा अच्छे या बुरे के लिए प्रभावित होता है, स्वयं उसे सिद्धांत से नियंत्रित होना चाहिए, और यदि वो अपने बच्चे का भला चाहती है तो उसे आत्मसंयम और आत्मत्याग का अभ्यास करना चाहिए। विवेकहीन सलाहकार मां पर प्रत्येक इच्छा और लालसा को तृप्त करने की आवश्यकता पर जोर देंगे, लेकिन ऐसी शिक्षा झूठी और हानिकारक होती है। मां को स्वयं परमेश्वर के आदेशानुसार आत्मसंयम का अभ्यास करने को कहा गया है। माता और पिता दोनों ही इस उत्तरदायित्व में भागीदार हैं। दोनों ही अपनी निज विशेषताएं, मानसिक व शारीरिक, अपना स्वभाव और प्रवृत्ति अपनी संतान में संचारित करते हैं। पैतृक असंयम के कारणवश संतान में नैतिक और मानसिक क्षमता और शारीरिक शक्ति का अभाव होता है। मदिरापान वाले और तंबाकू खाने वाले अपनी अतृप्त तृष्णा, अपने उत्तेजना पूर्ण कर सकते हैं और करते हैं। व्यभिचारी प्रायः अपनी अपवित्र इच्छाओं और घृणास्पद रोगों को अपने वंशजों के लिए विरासत के तौर पर देते हैं। संतानों के पास प्रलोभन का प्रतिकार करने की शक्ति अपने अभिभावकों से कम होने के कारण प्रत्येक पीढ़ी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार नीचे गिरते जाते हैं। काफी हद तक माता पिता न केवल अपने बच्चों की विकृत प्रवृत्तियों और हिंसक आवेगों के लिए उत्तरदायी है, वरन उन हजारों की दुर्बलताओं का भी कारण है जो बहरे, अंधे, रुग्ण या मूर्ख पैदा होते हैं।
प्रत्येक माता पिता को पूछना चाहिए, हम उस बच्चे के लिए क्या करें जो उत्पन्न होने वाला है। प्रसव पूर्व प्रभाव की आवृत्ति को कोई लोग महत्वहीन समझते हैं, लेकिन उन इब्री अभिभावकों को स्वर्ग से दिया गया निर्देश, जिसे दो बार स्पष्ट और औपचारिक रूप से दोहराया गया, इस बात की पुष्टि करता है कि सृष्टिकर्ता इस विषय को किस प्रकार देखता है। यह पर्याप्त नहीं था कि प्रतिशुद्ध बालक को अपने अभिभावकों से एक अच्छी विरासत मिले। इसके बाद विवेकपूर्ण प्रशिक्षण और सद्व्यवहार का विकास होना अनिवार्य था। परमेश्वर ने निर्देश दिया कि भावी न्यायाधीश और इज़राइल के मुक्तिदाता को बचपन से आत्मसंयम में प्रशिक्षण दिया जाए। उसे जन्म से नाज़ीर होना था, इस कारण उसके लिए हमेशा के लिए दाख मधु या किण्वित पेय पदार्थों का प्रयोग प्रतिबंधित था। आत्मसंयम, आत्मत्याग और आत्मनियंत्रण बच्चों को बचपन से सिखाया जाना चाहिए। स्वर्गदूत की निषेधाज्ञा में प्रत्येक अशुद्ध वस्तु सम्मिलित थी। भोजन वस्तुओं के शुद्ध या अशुद्ध होने का अंतर निरारीति संबंधी और एक पक्षीय अधिनियम नहीं था, वरन वह स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों पर आधारित था। जिस आश्चर्यजनक प्राण शक्ति ने हजारों वर्षों से यहूदी लोगों को विशिष्टता प्रदान की है, उसे काफी हद तक इस अंतर को मान्यता देने से जोड़ा जा सकता है। आत्मसंयम के सिद्धांतों को किण्वित पेय पदार्थों के प्रयोग से भी आगे ले जाया जाना चाहिए। अपचनीय और उत्तेजनापूर्ण भोजन भी स्वास्थ्य के लिए प्रायः उतना ही हानिकारक होता है और कई बार मादकता के बीज बो देता है। वास्तविक आत्मसंयम हमें सिखाता है कि हम हानिकारक वस्तुओं को पूर्णतया त्याग दें और स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं का विवेकपूर्ण प्रयोग करें। बहुत कम है वे लोग जो समझते हैं, जैसा कि उन्हें समझना चाहिए, कि उनकी आहार संबंधी आदतों का उनके स्वास्थ्य, उनके आचरण, इस संसार में उनकी उपयोगिता और उनकी सनातन नियति से कितना गहरा संबंध है। स्वाभाविक इच्छाएं हमेशा नैतिक और बौद्धिक शक्तियों के पराधीन होना चाहिए। शरीर को विवेक का दास होना चाहिए, न कि विवेक को शरीर का। मनो से की गई पवित्र प्रतिज्ञा एक पुत्र के जन्म के द्वारा नियत समय पर परिपूर्ण हुई और उस बालक का नाम शिमशोन रखा गया। लड़का जब बड़ा हुआ तो यह प्रमाणित हो गया कि वह असाधारण शारीरिक शक्ति का स्वामी था। हालांकि शिमशोन और उसके माता पिता यह भली भांति जानते थे कि यह उसकी कसी हुई मांसपेशियों पर निर्भर नहीं थी, वरन उसके नाज़ीर होने में थी, जिसका प्रतीक उसके लंबे अनकटे केश थे। यदि शिमशोन ने अपने माता पिता के समान पवित्र आज्ञा का निष्ठापूर्ण पालन किया होता तो उसकी नियति श्रेष्ठतर और आनंदमय होती, लेकिन मूर्ति पूजकों की संगत ने उसे भ्रष्ट कर दिया। सोरा शहर पलिश्तियों के देश के समीप था, इसलिए शिमशोन ने उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अपनी नौजवानी में अनैतिक प्रेम संबंध स्थापित हो गए, जिसके प्रभाव ने उसके संपूर्ण जीवन को अंधकारमय बना दिया। तिम्ना के पलिश्ती शहर में रहने वाली एक नवयुवती ने शिमशोन को आकर्षित किया और शिमशोन ने उसे अपनी पत्नी बनाने का संकल्प लिया। परमेश्वर का भय मानने वाले उसके माता पिता, जिन्होंने उसको उसके उद्देश्य के विपरीत परामर्श देने का प्रयत्न किया, उनको उसने उत्तर दिया, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। माता पिता ने उसकी इच्छाओं के आगे समर्पण कर दिया और विवाह हो गया। जब वह पुरुषत्व में प्रवेश करने वाला था, उस समय में जब उसे ईश्वरीय विशेष कार्य को क्रियान्वित करना था, अन्य समयों से अधिक महत्वपूर्ण, जब उसे परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए था, शिमशोन ने स्वयं को इज़राइल के शत्रुओं से संबद्ध कर लिया। उसने यह नहीं पूछा कि वह अपनी पसंद की वस्तु को पाकर परमेश्वर की बेहतर महिमा कर सकता था, या वह स्वयं को उस स्थान पर रख रहा था जहां वह उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता था जो उसके जीवन से संपन्न होना था। जो सबसे पहले परमेश्वर को सम्मानित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें परमेश्वर बुद्धिमत्ता का आश्वासन देता है, लेकिन स्वयं को संतुष्ट करने पर तुले हुए लोगों के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं। कितने हैं जो उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर शिमशोन चला था? कितनी बार विवाह धर्मियों और अधर्मियों के बीच संपन्न होते हैं, क्योंकि पति और पत्नी के चयन में रुझान को प्राथमिकता दी जाती है। दोनों ही पक्ष ना तो परमेश्वर का परामर्श लेते हैं और ना ही उसके गौरव को देखते हैं। वैवाहिक संबंध पर मसीहत का नियंत्रकारी प्रभाव होना अनिवार्य है, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि इस संबंध से जुड़ा उद्देश्य मसीही सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होता।
शैतान परमेश्वर के लोगों को अपनी प्रजा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उकसाकर उन पर अपने आधिपत्य को दृढ़ करने के लगातार प्रयास कर रहा है, और इसको संपूर्ण करने के लिए वो हृदय में अपवित्र भावनाएं जागृत करने का प्रयत्न करता है। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से अपने वचन में अपने लोगों को निर्देश दिया है कि वे उनके साथ संबंध ना जोड़ें जिनमें उसके प्रेम का वास नहीं। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? दूसरा कुरंथियों 6:15-16। विवाह समारोह के अवसर पर शिमशोन का इज़राइल के परमेश्वर से घृणा करने वालों के साथ परिचय हुआ। जो भी स्वेच्छा से ऐसे संबंध जोड़ता है वो काफी हद तक अपने साथियों के रीति रिवाजों और आदतों से सहमत होने की आवश्यकता को महसूस करता है। इस तरह बिताया हुआ समय व्यर्थ गंवाने से भी बुरा है। ऐसे विचारों को माना जाता है और ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो सिद्धांत के गण को गिरा देते हैं और आत्मा के किले को दुर्बल बना देते हैं। वो पत्नी जिसे पाने के लिए शिमशोन ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, विवाह समारोह के समापन के पूर्व ही अपने पति के प्रति विश्वासघाती प्रमाणित हुई। उसके विश्वासघात से क्रोधित होकर कुछ समय के लिए शिमशोन ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सोर में अपने घर अकेला ही चला गया। बाद में दया करके जब वो अपनी पत्नी को लाने के लिए लौटा तो उसने उसे अन्य पुरुष की पत्नी पाया। पलिश्तियों की दाख की बारियों और खेतों को नष्ट करके शिमशोन ने अपना प्रतिशोध लिया, जिससे भड़क कर उन्होंने उसी स्त्री की हत्या कर दी, जबकि उन्हीं की धमकियों ने उससे वो छल करवाया था जिसके कारण ये क्लेश आरंभ हुआ। अश्कलोन के 30 पुरुषों को मारकर और एक सिंह को निहत्थे व अकेले घात कर अपनी आश्चर्यजनक शक्ति का प्रमाण दे चुका था। शिमशोन ने अब अपनी पत्नी की नृशंस हत्या से क्रोधित होकर पलिश्तियों पर चढ़ाई कर बड़ी निष्ठुरता के साथ बहुतों को मार डाला। तब अपने शत्रुओं के पास से सुरक्षित लौटने की इच्छा से वो एताम नामक चटटान की दरार में जाकर रहने लगा, जहां यहूदा का गोत्र रहता था। एक शक्तिशाली सेना ने उसका इस स्थान तक पीछा किया और यहूदा के वासियों ने अत्यंत भयभीत होकर शिमशोन को उसके शत्रुओं के हाथों में देकर नीचतापूर्ण कार्य किया। तदनुसार यहूदा के 3,000 पुरुष एताम नामक चट्टान में उसके पास गए, लेकिन ऐसी अनुकूल परिस्थिति में भी उन्होंने उस पर चढ़ाई करने का दुस्साहस नहीं किया होता यदि वे आश्वस्त नहीं होते कि वो अपने निज देशवासियों को हानि नहीं पहुंचाएगा। शिमशोन इस बात के लिए सहमत हो गया कि उसको बांधकर पलिश्तियों को सौंप दिया जाए, लेकिन उसने यहूदा वासियों से शपथ ली कि वे स्वयं उस पर प्रहार नहीं करेंगे और इस रीति से उसे बाध्य नहीं करेंगे कि वो उन्हें नष्ट कर डाले। उसने उनके द्वारा स्वयं को 2 नई रस्सियों से बंधने दिया और उल्लास भरे प्रदर्शनों के साथ उसे उसके शत्रुओं की छावनी में ले जाया गया। लेकिन जब उनकी ललकार पहाड़ों की गूंज को जागृत कर रही थी, तब यहोवा का आत्मा उस पर बहुतायत से उतरा। उसने नई रस्सियों को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर डाला मानो वो आग में जलासन हो। फिर उस हथियार को ले जो उसे सबसे पहले मिला, जो कि केवल एक गधे के जबड़े की हड्डी थी पर भाले या तलवार से भी अधिक कारगर प्रमाणित हुई, उसने पलिश्तियों पर ऐसा प्रहार किया कि वे डरकर भाग खड़े हुए और अपने पीछे 1,000 पुरुषों को मैदान में मरा हुआ छोड़ गए। यदि इज़राइली शिमशोन के साथ एक होकर इस विजय की आगे की कार्यवाही करने को तैयार होते तो इस समय स्वयं को अपने दमनकारियों से स्वतंत्र करा लेते, लेकिन वे हतोत्साहित और कायरतापूर्ण हो गए थे। अधर्मियों के निष्कासन में जिस कार्य को करने की आज्ञा इज़राइलियों को परमेश्वर ने दी थी उसकी उन्होंने उपेक्षा की थी, और उनकी निर्दयता को सहन करते हुए उनकी अपमानजनक प्रथाओं में उनके साथ सम्मिलित हो गए थे। और जब तक ये उनके ही विरुद्ध संचालित न की गई, वे उनके अन्याय का भी प्रतिपालन करते रहे। जब वे स्वयं अत्याचारी के अधीन हो गए, वे सरलता से उस दुर्दशा के अधीन हो गए जिससे यदि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया होता वे बच सकते थे। परमेश्वर द्वारा उनके लिए मुक्तिदाता खड़ा करने के बाद भी वे प्रायः उसे छोड़कर शत्रु के सहयोगी हो जाते थे। शिमशोन की इस विजय के पश्चात इसराइलियों ने उसे न्यायाधीश बना दिया और उसने 20 वर्ष तक इसराइल पर राज किया। लेकिन एक गलत कदम दूसरे के लिए मार्ग तैयार करता है। पलिश्तियों में से पत्नी लेकर शिमशोन ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और फिर से उसने नियम विरुद्ध लालसाओं की तृप्ति के लिए उनके बीच जोखिम उठाया जो अब उसके शत्रु थे। अपनी उस शक्ति में विश्वास रखकर जिसने पलिश्तियों को इतना भयभीत कर दिया था, उसने गाजा की एक कस्बी से भेंट करने वहां जाने का दुस्साहस किया। नगरवासियों को उसकी उपस्थिति की जानकारी मिली और वे प्रतिशोध लेने के लिए आतुर थे। उनका शत्रु उनके शहरों में से सबसे आरक्षित शहर की सीमाओं के भीतर था और वे शिमशोन को दबोचने के लिए निश्चिंत थे और अपनी विजय को संपन्न करने के लिए केवल प्रातःकाल तक रुके। मध्यरात्रि को शिमशोन को जागृत किया गया। अंतरात्मा की दोष लगाती आवाज ने उसे ग्लानी से भर दिया और उसे स्मरण हुआ कि उसने नाजीर के तौर पर ली गई शपथ का खंडन किया था। लेकिन उसके पाप के बावजूद परमेश्वर की दया उस पर बनी हुई थी। उसके छुटकारे के लिए एक बार फिर उसकी असाधारण शक्ति ने साथ दिया। वो नगर के फाटक तक गया और उसने उसके दोनों स्तंभों और किवाड़ों को बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। लेकिन बाल बाल बचने पर भी उसने अपना पापमय चालचलन नहीं त्यागा। उसने पलिश्तियों के बीच जाने का दुस्साहस तो नहीं किया, लेकिन वो उन कामुकतापूर्ण सुखों का भोग करता रहा जो उसे विनाश की ओर धकेल रहे थे। उसकी जन्मभूमि से बहुत दूर नहीं सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलील नाम की एक स्त्री से वो प्रीति करने लगा। दलील का तात्पर्य है उपभोक्ता। सोरेक की घाटी अपनी दाख की बारियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी उस अस्थिर नाजीर के लिए प्रलोभन थे जो मदिरापान करके परमेश्वर और पवित्रता से संलग्न करने वाले एक अन्य बंधन को तोड़ चुका था। पलिश्ती अपने शत्रु की गतिविधियों पर चौकस दृष्टि जमाए हुए थे और जब उसने इस नए मोह से स्वयं को नीचे गिराया तो उन्होंने दलील के माध्यम से उसके विनाश को संपन्न करने का संकल्प किया। प्रत्येक पलिश्ती प्रांत से एक एक व्यक्ति चुनकर एक प्रतिनिधिमंडल सोरेक की घाटी में भेजा गया। जब तक उसकी महाशक्ति उसके पास थी उन्होंने उसे वश में करने का दुस्साहस नहीं किया, लेकिन यदि संभव था तो वे उसकी शक्ति के रहस्य को जानना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने दलील को रिश्वत देकर उसे रहस्य का पता लगाकर उन्हें बताने को कहा। जब दलील ने प्रश्नों के साथ शिमशोन से अनुरोध किया तो शिमशोन ने उसे कई ऐसी प्रक्रियाएं बताकर जिनके द्वारा वो साधारण मनुष्य के समान हो जाता भरमाया। जब उसने इस विषय को परखा तो झूठ पकड़ा गया। उसने शिमशोन को झूठ बोलने के लिए उलाहना दी और कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं? तूने तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरी शक्ति कहां वास करती है। तीन बार शिमशोन को स्पष्ट प्रमाण मिला कि पलिश्तियों ने उसे नष्ट करने के लिए उसकी सम्मोहिनी के साथ संधि कर ली थी। लेकिन जब दलील का उद्देश्य विफल रहा उसने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया और शिमशोन ने बिना सोचे समझे अपने मन से डर निकाल दिया। दलील के प्रत्येक दिन आग्रह करने पर उसकी आत्मा इतनी दुखित हो गई मानो वह मरने वाला हो। लेकिन एक धूर्त शक्ति ने उसे दलील के पास से दूर न होने दिया। पराजित होकर शिमशोन ने रहस्य को खोल दिया। मेरे सिर पर उस तरह कभी नहीं फेरा गया क्योंकि मैं मां के पेट से ही नाजीर हूं। यदि मेरा मुंडन कर दिया जाए तो मेरी शक्ति इतनी घट जाएगी कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तत्काल ही एक दूत को पलिश्तियों के सरदारों के पास भेजा गया और उनसे आग्रह किया गया कि वे अविलंब उसके पास चले आएं। जब योद्धा सो रहा था उसके सिर के घने बाल काट दिए गए। फिर जैसा उसने पहले तीन बार किया था पुकारा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। अचानक से उठकर शिमशोन ने पहले की तरह अपने बल का उपयोग कर उन्हें नष्ट करने पर विचार किया, लेकिन उसकी शक्तिहीन भुजाओं ने उसका साथ नहीं दिया और वो समझ गया कि यहोवा उसके पास से चला गया है। जब उसका मुंडन कर दिया गया, दलील उसे तंग करके कष्ट पहुंचाने लगी और इस प्रकार उसकी शक्ति की परख करने लगी, क्योंकि पलिश्ती ने तब तक उसके निकट आने का दुस्साहस नहीं किया जब तक उन्हें उसके शक्तिहीन हो जाने का आश्वासन न मिला। फिर उन्होंने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा ले गए। यहां उसे उनके बंदी गृह में बेड़ियों से जकड़ दिया गया और उससे कठिन परिश्रम कराया गया। क्या परिवर्तन था उसके लिए जो इसराइल का शूरवीर और न्यायी रहा था। अब वो निर्बल, अंधा, कैद में सबसे तुच्छ कामों के लिए निम्नीकृत कर दिया गया। थोड़ा थोड़ा करके उसने अपनी पवित्र बुलाहट के नियमों को खंडित किया था। परमेश्वर ने उसको बहुत समय तक सहन किया, लेकिन जब उसने स्वयं को पाप के वश में इस सीमा तक होने दिया कि उसके रहस्य को खोल दिया, तब यहोवा उसके पास से चला गया। उसके बालों में मात्र कोई गुण नहीं था। उसके बाल परमेश्वर के प्रति उसकी सत्यनिष्ठा या स्वामी भक्ति का प्रतीक थे। और फिर मनोवेग की संतुष्टि में जब इस प्रतीक की बलि चढ़ा दी गई, तो वे आशीषें जिनका प्रतीक वह बाल थे भी गवा दी गईं। कष्ट और अपमान में, जो पलिश्तियों के लिए मनोरंजन था, शिमशोन को अपनी दुर्बलता के बारे में इतना कुछ ज्ञात हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ था, और उसके कष्ट ने उसे प्रायश्चित करने के लिए विवश कर दिया। जैसे जैसे उसके बाल बढ़ने लगे, उसकी शक्ति धीरे धीरे लौटने लगी, लेकिन उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ और असहाय कैदी समझकर उसके शत्रुओं को कोई संदेह नहीं हुआ। पलिश्तियों ने अपनी विजय का श्रेय अपने देवी देवताओं को दिया और मग्न होकर इसराइल के परमेश्वर को ललकारा। समुद्र के संरक्षक, मछली देवता दागोन के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। पलिश्ती तराई के एक छोर से दूसरे छोर तक के गांवों और शहरों से लोग और उनके सरदार एकत्रित हुए। विशाल मंदिर और छत के गलियारों में उपासकों का जमघट लग गया। यह उत्सव और हर्षोल्लास का दृश्य था। बलि की भेंट की धूमधाम के बाद संगीत और सहभोज था। फिर दागोन की शक्ति के उत्कृष्ट जयचिन्ह के तौर पर शिमशोन को भीतर लाया गया। उसके आने पर लोग चिल्ला उठे। लोगों और सरदारों ने उसके दुख का उपहास किया और उस देवता की उपासना की जिसने उनके देश के विनाशक को पराजित किया था। कुछ समय पश्चात, मानो वह थक गया हो, शिमशोन ने मंदिर की छत को थामने वाले दो बीच के स्तंभों का सहारा लेकर खड़े, प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, इस बार मुझे शक्ति दे कि मैं पलिश्तियों से बदला लूं। तब शिमशोन ने अपनी शक्तिशाली भुजाओं के घेरे में स्तंभों को लिया और वह झुका और छत धराशायी हो गई, और एक ही झटके में वह पूरा जनसमूह नष्ट हो गया। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। वह मूर्ति और उसके उपासक, याजक और खेतीहर, योद्धा और महापुरुष, सभी दागोन के मंदिर के मफे के नीचे एक साथ दब गए। और उन्हीं के बीच था उसका दीर्घकाय शरीर, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों का मुक्तिदाता होने के लिए चुना था। इस भयानक पराजय का समाचार इसराइल के देश में पहुंचा और शिमशोन के परिजन पहाड़ों से उतर कर आए और निर्विरोध अपने मृत नायक के पार्थिव शरीर को ले आए, और वे उसे उठाकर ले गए और सोरा और एश्तायोल के मध्य उसके पिता मनोह की कब्र में मिट्टी दी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि शिमशोन के द्वारा वो पलतिशितियों के हाथों से इसराइल को छुटकारा दिलाना आरंभ करेगा, पूरी हुई। लेकिन कितना कलंकित और भयानक है उस जीवन का इतिहास जो परमेश्वर के लिए सराहना और कुल के लिए महिमा हुआ होता। यदि शिमशोन अपनी पवित्र बुलाहट के प्रति सत्यनिष्ठ होता, तो उसके सम्मान और उत्थान में परमेश्वर का उद्देश्य परिपूर्ण होता। लेकिन वो प्रलोभन के आगे हार गया और अपने दायित्व में खरा नहीं उतरा, और उसका विशेष कार्य पराजय, बंधुआई और मृत्यु में परिपूर्ण हुआ। शारीरिक रूप से शिमशोन पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली पुरुष था, लेकिन आत्मसंयम, सत्यनिष्ठा और दृढ़ता में वो मनुष्यों में सबसे निर्बल था। कई लोग प्रबल आवेग को ओजस्वी चरित्र समझने की भूल करते हैं, लेकिन यथार्थ में जो अपने आवेगों के अधीन होता है वो निर्बल मनुष्य होता है। मनुष्य की वास्तविक महानता उन भावनाओं की शक्ति से मापी जाती है जिन्हें वो नियंत्रित करता है, ना कि उनसे जो उसे नियंत्रित करती है। परमेश्वर की सुरक्षा व देखभाल शिमशोन पर थी, जिससे कि वो उस कार्य को संपन्न करने के लिए तैयार किया जा सके जिसके लिए उसे बुलाया गया था। अपने जीवन के प्रारंभ से ही वो शारीरिक शक्ति, बुद्धिजीवी क्षमता और नैतिक पवित्रता के लिए अनुकूल परिस्थितियों से घिरा हुआ था, लेकिन दुष्कर्मी सहभागियों के प्रभाव में उसने परमेश्वर पर अपनी पकड़ को जाने दिया, जो मनुष्य की एकमात्र सुरक्षा है, और बुराई का ज्वार उसे बहा ले गया। जिन्हें कर्तव्य के मार्ग में परखा जाता है वे निश्चित रहे कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन यदि मनुष्य जानबूझकर प्रलोभन में पड़ता है वो शीघ्र ही या देर से गिरेगा। उन्हीं को जिन्हें परमेश्वर एक विशेष कार्य के लिए अपने साधन के रूप में उपयोग करना चाहता है, शैतान अपनी पूरी ताकत से पथ भ्रष्ट करने का प्रयत्न करता है। वो हमारी निर्बलताओं पर आक्रमण करता है, हमारे चरित्र की त्रुटियों के माध्यम से हमारे संपूर्ण अस्तित्व को नियंत्रित करता है, और वो जानता है कि यदि इन त्रुटियों को संजोया जाए तो वो सफल होगा। लेकिन किसी को पराजित होने की आवश्यकता नहीं। बुराई की शक्ति को अपने निज साधारण प्रयत्नों से जीतने के लिए मनुष्य को अकेले नहीं छोड़ दिया गया है, सहायता पास ही है, और ये प्रत्येक उस प्राणी को दी जाएगी जो वास्तविकता में उसे पाना चाहता है। परमेश्वर के दूत, जो याकूब द्वारा स्वप्न दर्शन में देखी गई सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं, प्रत्येक इच्छुक प्राणी की सर्वोच्च स्वर्ग तक चढ़ने में सहायता करेंगे।